Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ketu Darpan Marjanam Bhavamaha दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतस्वादनम् स्वात्मा प्रश्नप्रणम् परम विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भव भीताः अहमिह वन्दे नन्दम् यस्यालिन्दे परब्रह्म परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप, आइए कैवल्योपनिषद के माध्यम से आप अपने आत्मा का वर्णन आत्मचिंतन कर रहे हैं तो ये ध्यान योग का प्रसंग है। आपने सुना था कि उस आत्मचिंतन का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान कैसे हो, तो श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवैहि। श्रद्धा हो बुद्धि में और भक्ति प्रेम हृदय में हो और फिर मन की शांत, मन की चंचलता शांत होके ध्यान योग हो तो उसके द्वारा जाना जा सकता है। तो इसी को बता रहे हैं, विविक्त देशे च सुखासन स्था, एकांत स्थान हो, सुख का सुखपूर्वक आसन लगाए। और इतना ही नहीं, शरीर का सम काय शिरो ग्रीवा, समह ग्रीवा शिरा शरीरा, इस समता में स्थित हो। और फिर अत्याश्रमस्था सकलेन्द्रियाणी, संपूर्ण इंद्रियों को रोक कर निरुद्ध, भक्तिया सुगुरुम प्रणम्य, बड़े भक्ति पूर्वक बड़े प्रेम से अपने गुरुदेव को मन ही मन में प्रणाम करे। फिर बुरते हृदपुंड रीकम वीरजम, कैसा हो वीरजम विशुद्धम, हृदय रूपी कमल में वीरज माने रजोगुण से रहित हो करके और विशुद्ध विशुद्ध आत्म तत्व का दर्शन करें। कैसे बोले, विचिंत मध्य विशदम विशोकम, उस कमल के बीच में विशोक और विशद आत्मा का चिंतन करें। ये ध्यान योग की विधि बताई, जिसको आजकल मेडिटेशन कहते हैं। गीता के छठवें अध्याय में आप लोगों ने उस दिन सुना ही था, बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है छठवें अध्याय में। तो उसमें सबसे पहले ये बात दी गई कि भाई आहार विहार व्यवहार विचार ठीक होना चाहिए, युक्त आहार विहार से। ये क्यों दिया, युक्त चेष्ट से कर्मसु, वो ये दिया कि भाई यदि आहार विहार गड़बड़ होगा, हमने निवेदन किया था कि आहार माने केवल मुंह से दिया हुआ भोजन नहीं है, संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा जो खुराक जाती है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, पूरे शरीर पर। इसलिए आहार विहार भी ठीक युक्त होना चाहिए और नींद भी ठीक आना चाहिए। चरक में सूत्र स्थान में शुरू में दिया त्रय स्तंभा शरीरस्य, शरीर के तीन खंभे हैं जिनके द्वारा वो आधारित है। ये आयुर्वेद का मुख्य विषय है। तीन खंभे कौन कौन से हैं जिनके जिनके जिन खंभों पर शरीर टिका हुआ है? बोले आहारः निद्रा ब्रह्मचर्यं चेति। आहार भोजन, आहार्यन्ते इति आहारः, जो खुराक इंद्रियों से ग्रहण की जाती है, जैसे मुख से भोजन करते हो, आंख से रूप देखते हो, त्वचा से स्पर्श, नाक से सुगंधि, कान से शब्द, ऐसे अलग अलग जिन जिन इंद्रियों से जो जो ग्रहण करते हो, सो वो ग्रहण कैसा हो रहा है, तुम्हारे भीतर जाकर के उसका क्या प्रभाव पड़ता है, रजोगुण बढ़ाता है कि तमोगुण बढ़ा देता है कि सत्वगुण का प्रकाश फैल जाता है, ये आपको देखना पड़ता है। तो ये आहार और निद्रा, निद्रा का बड़ा महत्व है। अगर नींद एक दिन ना आवे तो आपको बेचैनी आ जाएगी, क्या बता नींद नहीं आई। इसका मतलब विश्राम आपको चाहिए। और दूसरे दिन काम भी नहीं हो पाएगा, अरे बोले आज नींद नहीं आई भाई ठीक से। तो नींद ना आने से काम भी नहीं हो पाएगा, शरीर की स्फूर्ति भी गायब हो जाएगी। इसका मतलब निद्रा भी जरूरी है, निद्रा आनी चाहिए। अच्छा, अब ब्रह्मचर्य चेति, ब्रह्मचर्य व्रत। और ब्रह्मचर्य का भी यही अर्थ है कि संपूर्ण इंद्रियां जितनी उपयुक्त हो उतना ग्रहण करें विषय को। ब्रह्मचर्य माने ये नहीं है कि विवाह नहीं हुआ तो ब्रह्मचारी हो गए, वो तो लाचारी में ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य का मतलब है, इसीलिए कहा गया एक नारी सदा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या में आचरण चरण होए, तो ब्रह्म विद्या का आचरण कब हो सकता है? जब तुम्हारी इंद्रियां बस में होंगी। इसीलिए यहां एक बड़ा सुंदर शब्द दिया, अत्याश्रमस्था सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध। संपूर्ण इंद्रियों को रोक करके, एक नहीं एक एक विषय को। तो इसलिए ये त्रय स्तंभा शरीरस्य, आहार भोजन निद्रा ब्रह्मचर्यं चेति, ये आयुर्वेद का मुख्य विषय है। आजकल आसन पर तो बहुत ध्यान देते हैं लोग, लेकिन आसन के पहले यम नियम वगैरह का कुछ ध्यान नहीं देते। कैसा भोजन होना चाहिए, जो चाहो सो खाओ, जैसे चाहो सो रहो, समाधि तुम्हें लगवा दी जाएगी। अरे ऐसा कहीं होता है जो चाहो सो खाओ? तो यहां ये लिखा है स्पष्ट, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिया सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। कितनी बढ़िया बात है कि जब तुम्हारा चित्त अपने आश्रय में लग जाएगा तो कब लगेगा? बोले सब कामनाओं से निष्प्रिय हो जाएगा। कोई कामना कोई संकल्प अगर बीच में फुरफुराता रहेगा तो फिर चित्त अपने आश्रय में नहीं लग पाएगा। इसलिए वो को युक्त चित्ते, उसको युक्त कहा गया। कैसे? बोले जैसे एक महात्मा से पूछा एक देवी ने कि महाराज ध्यान कैसे लगाएं? बोले अंधेरा है, अभी जरा दीपक ले जाओ। हवा बड़ी तेज चल रही थी, तो जब वो दीपक किसी तरह से जगा तो कहा इस कमरे से उस कमरे में ले जाओ। अब उसने आंचल से ऐसे ढांक के धीरे 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 कदम रख रख के, अब गुरुजी ने कहा है तो उस कदम उस कमरे में ले गई। हवा बड़ी तेज है, बोले अच्छा तो ले आओ इधर ही ले आओ। फिर उस कमरे में धीरे 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 कदम रख रख के बोले यही है ध्यान की विधि। यथा दीपो निवातस्था, जैसे दिया खूब हवा चल रही हो और बड़ी सावधानी से उसकी ज्योति हिलने न पावे, निंगते सोपमा स्मृता, ऐसे ही योगी का चित्त शांत होना चाहिए। जरा भी, अब देखो कितनी बढ़िया उपमा दी गई। यथा दीपो निवातस्था निंगते नोपमा स्मृता, कैसे भले ही बस योगिना यत चित्तस्य युञ्जतो योगमाश्रयः। देखो ये आत्मना शब्द दिया, योग आत्मना युञ्जतो, अपने से जोड़ने के लिए ऐसे चाहिए जैसे दीपक की ज्योति नहीं हिलती है हवा चलते समय। ऐसे चित्त के जो संस्कार है ना, वो फुरफुराते रहेंगे तो आपका चित्त खाली नहीं होगा। तब बोले यत्रोप रमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग के द्वारा जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यत्यात्मनि, ये कब प्रसन्न होगा और कब अपने को देख पाएगा, इसलिए चित्त का निरुद्ध होना जरूरी है। अब यहां कहा सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध, संपूर्ण इंद्रियों को रोक करके और भक्त्या सुगुरुम प्रणम्य सुखमात्यंतकम यत्तद् बुद्धिग्राही मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये बड़ा महत्व का मंत्र है। कहते हैं ये आत्यंतिक सुख कब मिलता है, आत्यंतिक सुख माने आत्मा से जब जुड़ जाते हो तो आत्मा का आनंद वैसे भी एकाग्र मन में तुम्हारे आत्मानंद का प्रतिबिंब पड़ता है, उसको तुम कहते हो बड़ा मजा आया बड़ा सुख मिला। तो जब आनंद आत्मा का प्रतिबिंब इतना सुखकारी होता है, तो अगर आनंद का अनुभव हो जाए तो फिर इंद्रियों से क्यों भीख मांगनी पड़े, तब तो फिर आनंद ही आनंद है। तो इसलिए कहा गया कि यम लब्ध्वा चापरम लाभ, जिसको प्राप्त करके फिर दुनिया में कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि अपने आत्मा का अपने आस्वरूप का आनंद आपको अनुभव में आ जाए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यतेनाधिकम ततः, तो उससे क्या लाभ होगा, बोले यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, बड़े से बड़ा दुख आवे और आप विचलित नहीं होंगे, ये मामूली फायदा है, इस पर जरा विचार करो। कहते हैं बड़े से बड़ा दुख आवे, वियोग आवे, अपमान आवे, हानि आवे, अपजस बदनामी हो जाए दुनिया में, ये सब जितने बड़े बड़े दुख हैं, बड़े से बड़ा दुख आवे और जीवन में विचलित न होए, ये कोई मामूली बात है। कहते यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, फिर दुख से विचलित नहीं हो सकता। अब जीवन में व्यक्ति दुखी क्यों होता है, इसीलिए दुखी होता है कि हाँ आज हानि पड़ गई, आज वियोग हो गया, आज अपमान हो गया, दुनिया में आज बदनामी हो गई, ये सब दुख होते हैं ना, तो बताते हैं कि यस्मिन स्थितो, जिसमें स्थित होने पर बड़े से बड़ा दुख आवे और विचलित न हो, ऐसा एक ऐसा लाभ है, ऐसा आत्म स्थिति में लाभ है। जब आप आत्म स्थिति में हो जाएंगे तो अब ये और बड़ा सुंदर आगे दिया, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। अब देखो तम विद्या दुख संयोग वियोगम, ये ना कह करके सीधा दुख वियोगम कह देते, इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि परिस्थिति ना आवे। परिस्थिति तो तुम्हारे शरीर के साथ जुड़ी है, तो शरीर बना है प्रारब्ध से भाई, कर्म से, तो जो पहले के कर्म है, जो पहले का प्रारब्ध है, उसके अनुसार परिस्थिति तो आएगी, लेकिन उस परिस्थिति में तुम्हारी मनस्थिति सम रहेगी। परिस्थिति न टालो, मनस्थिति संभालो। अब ये कोई मामूली लाभ नहीं है, परिस्थिति आई, वियोग हुआ। जैसे अभी एक सत्संगी का बेटा मर गया, देखिए साहब, तो जब बेटा मर गया तो माता को तो दुख होना ही चाहिए, तो माता से जब पूछा गया तो उसने जवाब क्या दिया, कहा कि पहली बात तो एक ये है कि ये बचपन से सुन रखा है कि वो तो अनिवार्य है, संयोग से एक दिन वियोग, लाभ हानि, ये सब अनिवार्य है, और ये नाटक है संसार रंगमंच पर, विश्व रंगमंच पर जीव हरेक एक्टर बन के आता है, तो जिसका पार्ट पूरा हो जाता है वो अपना चला जाता है, इसमें दुख सुख की क्या बात, हम भी तो पाठ ही कर रहे हैं, तो हमारा भी पाठ जब पूरा हो जाएगा तो हम भी चले जाएंगे। अब उसका पाठ पूरा हो गया। अच्छा, एक और आश्चर्य ये लगा कि जब उसने कहा कि हमारे बेटे हैं दो, एक मर गया तो क्या हुआ, एक तो अब है, तो जो है वो वर्तमान में, हमें यही सिखाया गया कि वर्तमान में जो बच रहा है उसकी खुशी मनाओ, अब जो जह गया उसका पाठ पूरा हो गया तो गया। ये हमने बचपन से आपसे सीखा है। तो मैंने बताया कि परिस्थिति न टालो, मनस्थिति संभालो। गुरु बड़ा से बड़ा दुख आवे और फिर विचलित ना हो, ये गुरुणापि विचालित, इसीलिए कहा गया दुख संयोग वियोग। दुख का संयोग हुआ, देखो क्या मजे की बात, लेकिन दुख का संयोग होने पर भी, परिस्थिति आने पर भी तुम्हारे जीवन में दुख नाम नहीं हुआ। अर्थात तो इसका आदमी का जो मानव दुखी होता है वो अज्ञान के कारण होता है, वो अज्ञान ही उसमें मूल है, भूल है। वो ज्ञान अगर उसको होए, होश में देखे तो उसको दुख नहीं लगे, दुख आएगा लेकिन लगेगा नहीं, दुख की परिस्थिति तो आएगी क्योंकि वो तो भाई आता है। अच्छा, और दूसरी बात, दुख आता है हमारे संकल्प विकल्प से, आराम से बैठे मन में जाने क्या भूत का सोचने लगे, भूत का शोक, भविष्य का भय, वर्तमान में मोह में जकड़ा हुआ व्यक्ति दुखी हो जाता। इसलिए कहा संकल्प प्रवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसेन्द्रिय ग्रामम त्रिविधस्य। अब ये जब आपके समझ में आ जाएगी कि अरे भाई ये संकल्प प्रभाव है, कामनाएं जितनी भी हैं वो संकल्प से उठती हैं, संकल्प से हमारे विचार आए, संकल्प उठ गया, बस संकल्प प्रवान कामान, और कामना कीचड़ है, आप सुन ही चुके, ये तो बहुत कीचड़ है, इसमें फंसने से फिर उभरना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मन और इंद्रियों को धीरे धीरे रोकना चाहिए। कैसे? बोले शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृतगृहीतया आत्मसंस्तम्भना कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। ये ध्यान योग की विधि बताई, धीरे धीरे शनै शनै, ये नहीं कि जो एक महीने का कोर्स है सो दस ही दिन में पूरा करो, धीरे धीरे, आज दो मिनट, कल पांच मिनट, फिर दस मनट, फिर पंद्रह मिनट, फिर धीरे धीरे बैठने का अभ्यास करोगे, मन को संकल्पों से खाली करोगे, धीरे धीरे होता है। शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृत गृहीतया, धीरज धारण करके बुद्धि को लगाना चाहिए। अब ये इगबारगी शनै पर्वत लंघनम जो कहा गया, तो धीरे धीरे काम बनता है। अब मन को जब अपने आश्रय में लगा लोगे तो न किंचिदपि चिन्तयेत्, फिर कुछ चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संकल्प तो मन से ही होता है। आपने कई बार सुना कि मन इंद्रियों के और बुद्धि के बीच में रहता है, तो अब ये परख लेना है कि इस पर प्रभाव किसका है। अगर इंद्रियों का प्रभाव ज्यादा है तो इसका मतलब वो भोगी हो जाएगा, और अगर बुद्धि का प्रभाव मन पर है तो योगी हो जाएगा, और दोनों का 50-50% है, थोड़ा बहुत दोनों 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 का है तो अज्ञान है, अविवेकी है, न इधर में है न उधर में है। और एक बात और ध्यान की देने की है कि जब हृदय एक ऐसी वस्तु है, इसीलिए कहा हृदय पुंडरीकम, इसमें पंखुड़ियां हैं, कमल हैं। तंत्र शास्त्र ने तो बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया दिया है, तंत्र शास्त्र ने तो इनको कमल, सातों कमल माने, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, शास्त्रार्थ, ये सब कमल माने हैं। और कमल की कोमल कोमल पंखड़ियों पर क्षमा है, करुणा है, उदारता है, दया है, ये सब उसमें रह रहे हैं। क्षमा है, करुणा है, उदारता है, जब आपके जीवन में उन पंखड़ियों पर लिखा रहेगा, वो तंत्र शास्त्र में माना गया है अक्षरों का वर्णन।